ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्य नित्यानन्द। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है पंचशील श्री गौर निताय मंदिर में रविवार के भगवद गीता के सत्संग में। भगवद गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। 18वें अध्याय में सारी गीता का सार दिया हुआ है। तो सारी गीता के सार में आज हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 40 श्लोक तक पहले हुआ है शायद, आइए देख 40 श्लोक क्या कहता है देखें, फिर आगे बढ़ें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम
राम राम हरे हरे। तो 40वें श्लोक को एक नज़र देखते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जयि मुक्तं यदेवि स्यात् त्रिभिः गुणैः। तीन गुणों से, प्रकृति के तीन गुणों से मानव श्लोक क्या देवलोक तक भी कोई मुक्त नहीं है, अथवा देवता भी प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है और मनुष्य आदि भी प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है। पृथ्व्यां वा दिवि देवेशु वा, पृथ्वी अथवा देवलोक के देवता ये क्या है? प्रकृति जय, प्रकृति जय मतलब प्रकृति से जिनका जन्म हुआ है, किनका? त्रिभिर गुणई, तीन गुण जो प्रकृति से पैदा होते हैं उनके प्रभाव से इनमें से कोई भी मुक्त नहीं है। ऐसी बात पहले भी हमको 8वें अध्याय में ज्ञात होती है कि ब्रह्मा से लेकर छोटे कीट पतंग तक सभी प्राणी आते जाते रहते हैं। आभो ब्रह्म लोक पुनरावर्ति नो अर्जुन, अर्जुन पुनरावर्ति होती रहती है। तो ब्रह्म लोक सबसे ऊपर का लोक है देव लोकों में, वहां से लेकर नीचे तक छोटे लोगों तक तीन गुणों के प्रभाव के कारण उनका आना जाना रहता है। तो इस पृथ्वी के ऊपर भी तो तीन गुणों का प्रभाव है। हाँ जी है, तो पृथ्वी के ऊपर तीन गुणों का प्रभाव है तो मानव कैसे इससे बटे हुए हैं? कोई ऐसे प्रश्न पूछता है, भाई देवलोक का तो हमें पता नहीं, हम देवलोक के जाएंगे तब बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो रह रहे हैं। तो यहाँ अगर रह रहे हैं तो यहाँ के लोगों के ऊपर तीन गुणों का कैसा प्रभाव होता है, अथवा कौन सा स्वभाव यहाँ के लोगों का है जिनसे हम पहचान सकें कि ये कौन से गुण में व्यक्ति है, ये प्रश्न उठ सकता है। तो इस प्रश्न को सामने रखकर भगवान ये 41वां श्लोक बोलेंगे। आइए पढ़ेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम शूद्राणां च परं तपा कर्माणि प्रवभ्यक्तानि स्वभावा प्रभवै गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र हे परंतप, अपने कर्मों के विभाजन के अनुसार जो कर्म स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, स्वभाव प्रभवी, प्रभवी मतलब उत्पन्न होना, स्वभाव से जो उत्पन्न होते हैं, जो गुणों के द्वारा स्वभाव बनता है, उस स्वभाव के अनुसार ये चार वर्ण के लोग आपको इस संसार में पाए जाते हैं। तो कौन से आधार पे चार वर्ण पाए जाते हैं? बोला कर्माणि, पहले शब्द है कर्माणि, प्रभक्तानि, स्वभाव प्रकृति, स्वभाव प्रभवी गुणैहि। कर्म जो वो कर्म करता है उसके आधार के ऊपर उसका विभाजन होता है कि कौन सा गुण होता है। तो कर्म किस आधार के ऊपर करता है? बोला स्वभावी प्रभवी, अपने स्वभाव के प्रभाव से, जिस स्वभाव में उसका होगा सतोगुण का स्वभाव, किस आधार वाला? गुण ही, सतोगुण का स्वभाव है, रजोगुण का है, अथवा तमोगुण का स्वभाव है, इनके आधार के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मानव भी विभाजित है। तो ये बात भगवान इस पृथ्वी के विषय में मानव अर्जुन का ये कहने का द्वारा भी, देवलोक तो ठीक है, यहाँ के लोगों को कैसे जाना जाए कि कौन से प्रकृति के गुण के अधीन है, तो ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर कि भाई, और ऐसा चौथे अध्याय में भगवान एक बार कहे आए हैं, कहाँ कहा है चौथे अध्याय में इस बात को, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये चौथे अध्याय में पहले आया है श्लोक। क्या श्लोक आया है? चतुर्वर्ण्यम, चार वर्ण, मया सृष्टम, भगवान कहते हैं मैंने उसकी सृष्टि की है। भाई कौन से आधार पे आपने सृष्टि की है? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से। तो कौन सा गुण प्रभाव है, प्रभावशाली है उनमें, और कौन सा कर्म वो करते हैं, इन दो के आधार के ऊपर चार वर्णों की सृष्टि मैंने की है। तो भगवान ने चार वर्णों की सृष्टि की है। तो फिर वहाँ इतना ही भगवान ने कहा है, लेकिन अब चार वर्णों की सृष्टि जो भगवान ने की है, उन वर्णों का क्या काम है, कर्म कौन सा करते हैं वर्ण, उन कर्मों का वर्णन इसमें है। इन श्लोकों में सिर्फ कर्मों का वर्णन है। कर्माणि शब्द पहले है, तो अभी हम जो सुनेंगे सिर्फ उनके कर्मों का, क्या करते हैं उसका वर्णन आएगा, उनका स्वभाव कैसा है, जो ब्राह्मण है उसका स्वभाव कैसा है, क्षत्रिय का स्वभाव कैसा है, वैश्य का स्वभाव कैसा है, शूद्र का स्वभाव कैसा है, क्या क्या काम करता है, ये बात भगवान यहाँ कहेंगे। तो स्वभाव के आधार पर क्या है, आइए पहले ब्राह्मण के लक्षण सुने। शमो दमस तपः शौचम् शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानं विज्ञानं आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् स्वभावजम् मतलब स्वभाव से उत्पन्न होते हैं ब्राह्मण के कर्म। ब्राह्मण के कर्म, ब्राह्मण का कौन सा स्वभाव है? ब्राह्मण का सत्वगुण का स्वभाव होता है। यहाँ लिखा ना स्वभावजम्, स्वभाव से जन्म लेते हैं। कौन से स्वभाव से जन्म लेते हैं कोई पूछे तो? सत्वगुण के स्वभाव से जन्म लेते हैं। सत्वगुण में जो व्यक्ति प्रधानता रूप से सत्वगुण होता है, और गौण रूप से दूसरे गुण भी होंगे, लेकिन प्रमुख गुण कौन सा है? प्रीडोमिनेटिंग जो प्रमुख गुण है ब्राह्मण में वो सत्वगुण होता है, लेकिन गौण रूप में रजोतमोगुण भी अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से प्रकट रूप से तो ब्राह्मण का कर्म कैसे होंगे जो सत्वगुण में होते हैं? पहले है सम, सम मन, मन से शांति, जो शांत स्वभाव का है, तो जिसका मन अपने वश में है, तो सम शब्द मन से लगता है और दम शब्द इंद्रियों से लगता है। तो सम मतलब जिसका मन अपने वश में है और जो शांत स्वभाव वाला है, और दम मतलब जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके, दमन करने का मतलब अपने इंद्रियों को अपने वश में करके रखा हुआ है। तपह और जो तपस्या में प्रवृत्ति रखता है, तपस्या का मतलब अपनी स्वेच्छा से कुछ कठिनाई आती है तो उसको सहने के लिए तैयार है। तपस्या को प्रभुपाद कहते हैं, जैसे सर्दी में सुबह उठ के स्नान करना तपस्या है, सवेरे उठ के 4 बजे मंगल आरती में जाना तपस्या है। तो ब्राह्मण की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति ऐसे सवेरे उठने में उसको कोई आपत्ति नहीं होगी, सवेरे उठ के स्नान करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, और तो एकादशी आदि व्रत, जैसे कल एकादशी का व्रत है तो व्रत रखने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो तप में उसकी स्वभाव से ही रुचि होती है। तो तप है। शौचम, शौचम का मतलब पवित्रता, शुद्धता, यानी बाहर की अंदर की दोनों शुद्धता ब्राह्मण का लक्षण है। जो सत्वगुणी व्यक्ति है अपने घर को भी साफ रखेगा, रसोई को भी साफ रखेगा, वस्त्र आदि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा पहने, लेकिन सादा भी होगा लेकिन धुला हुआ साफ पहनेगा, और अंदर की भी सफाई प्रतिदिन करने का नियम रखेगा। अंदर की सफाई भगवान के नाम के जप से होती है, बाहर की सफाई स्नान आदि से शरीर की होती है। तो विशेष रूप से घर को भी साफ रखना, आगे अंग्रेजी में कहा बताएगा, हाँ, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जो पवित्रता है भगवता के बहुत निकटतम है। तो जो वैसे ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता है अथवा भगवान को जानता है अथवा अपने आप को शरीर से ऊपर समझता है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण स्वभाव से ही बहुत ही पवित्रता को पसंद करने वाला होता है, उसकी खान पान पवित्र होगा, उठना बैठना चौका रसोई सब पवित्र रखेगा। जैसे रसोई है, रसोई के अंदर जिस पात्र में भोजन बनता है वो पात्र रसोई से कभी बाहर नहीं आता है, ये नियम है ब्राह्मण के पवित्रता का। एक बर्तन है जिसमें वो निकाल के फिर वो बाहर आएगा, उसको कहते हैं ट्रांसफर यूटेंसिल, वो बाहर आया लेकिन उसमें खाया नहीं जाएगा, उसकी धुलाई अंदर होगी, लेकिन जिसमें खाया जाएगा उसकी धुलाई करने की जगह भी अलग होती है, वो किचन के अंदर नहीं होगा, जूठा बर्तन वापस नहीं जाएगा। तो ये किचन की ब्राह्मण की जो शुद्धता इतनी होती है कि पकाने वाला बर्तन और ट्रांसफर वाला बर्तन ये दोनों जूठे नहीं होते हैं, ये किचन में ही होते हैं, उधर ही उनकी धुलाई होती है, उधर रहते हैं, और जिसमें खाया जाता है उनके लिए अलग एक बनाई हुई जगह होती है जहां उनकी धुलाई होती है। किचन की शुद्धता हुई, पानी पीने की शुद्धता है, एक हाथ से खाएगा ब्राह्मण का, आपको खाना खाते हुए पता लग जाएगा कि व्यक्ति कौन से वर्ण का है। जो पुराने लोग हैं ना, वो जब भोजन करते हैं ना उस वक्त पहचान लेते हैं कि इसका स्वभाव क्या है, सतोगुणी है कि तमोगुणी है कि रजोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति ब्राह्मण जो स्वभाव उसका है, पहले तो सीधा हाथ ही केवल भोजन को लगाएगा, उल्टा हाथ कभी भी थाली को, भोजन को, किसी सामग्री को नहीं लगाएगा, केवल सीधे हाथ से ही भोजन को खाएगा। तो सीधे दोनों हाथ से काटना रोटी ये ब्राह्मण के स्वभाव में नहीं आता है। दूसरा हाथ तो लगाना ही नहीं है भोजन को, दूसरा हाथ, और फिर भोजन करने के बाद ये हाथ अथवा वो जगह है उसको भी साफ करेगा, जब थाली उठ जाएगी उधर भी पहुंचा देगा, चौका देगा, उसके ऊपर पांव आएगा तो कहेगा ये अशुद्ध हो गया, यहाँ झूठा है। तो आप कभी साधु संगत में प्रसाद खाने जाएंगे, बैठेंगे तो आप उठेंगे फिर सारी उसकी धुलाई होगी, उसके बाद उसके ऊपर पांव रखा जाएगा, दूसरा व्यक्ति बैठा तो खान पान में भी उसकी शुद्धि होगी, पूजा पाठ में तो शुद्धि होती है खान पान में, और व्यवहार में भी शुद्धि होगी, बोलेगा तो सच्चे बोलेगा, झूठ बोलने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो पवित्रता उसका एक लक्षण होता है। शमोदमस तप शोच क्षांतिर, क्षांतिर का मतलब जो दुख सुख को बर्दाश्त करना है। कभी आपके ने बुलाया ब्राह्मण को कि आपके घर में कोई ब्राह्मण का कार्य करना है, तो ठीक है आपने कार्य किया और कार्य समाप्त हो गया चला गया, आपने कभी उसको दिया कुछ तो ठीक है, नहीं दिया तो भी उसके लिए कोई झगड़ा करेगा ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं है, बर्दाश्त कर लेगा। कभी सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करना ब्राह्मण को देखना है तो यज्ञ जब करते हैं, बड़ा यज्ञ का कुंड होता है अभी जून जुलाई में, उसके चारों ओर बैठ के आहुति डालना बहुत बड़ी तपस्या की बात है, उसको वो हर एक आदमी बैठ के आहुति नहीं देता है, चार एक तो गर्मी बाहर की और फिर यज्ञ की गर्मी ऊपर आती है, तो हमने देखा है कोई वो पसीना होता है, तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको ये गर्मी बर्दाश्त करना और ये तपस्या करने की उनको एक प्रकृति उनके स्वभाव है, हर एक आदमी नहीं कर सकता है। तो ऐसा कहीं उद्विघ्न होने जैसी बातें होती भी हैं तो ब्राह्मण शांत रहता है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, मिला तो ईश्वर की इच्छा, नहीं मिला तो ईश्वर की इच्छा, दे दिया तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण कभी ऐसे शांत का मतलब है जो तितिक्षु, एक शब्द दूसरा इसके लिए तितिक्षु है बर्दाश्त करने, तो उसको उसको दुख सुख को बर्दाश्त करने की अभ्यास हो जाता है संसार में। विशेष रूप से इसका अर्थ यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ब्राह्मण विशेष रूप से संग्रह करने वाला नहीं होता है, तो संग्रह करने वाला नहीं होता है तो कभी है कभी नहीं है, तो भगवान के भरोसे हर अवस्था में अपने आप को शांत रखता है। शांति का मतलब वैसे शांत रखता है, हर अवस्था में शांत रखता है। आर्जवम का मतलब ईमानदारी, आर्जवम आर्जो आर्जू ईमानदार, ईमानदार अपने अपने व्यवहार में बिल्कुल ईमानदार होता है, किसी चीज़ में बेईमानी की भावना नहीं रखता है। क्यों ईमानदार होता है, इसलिए ईमानदार होता है तो भगवान के साथ उसका संबंध है, जो कार्य करता है भगवान के ही सेवा की तौर पर करता है, सेवा को ही आधार समझकर करता है, इसलिए विशेष रूप से ईमानदारी का अर्थ ये है कि किसी की चीज़ में ममता न रखना। ईमानदारी का भाव असल में माना ये है किसी चीज़ में ममता नहीं रखना। एक बार आपको कभी बताई थी कि एक राजा था अपने प्रजा के अंदर, बहुत पुराने से पुराने जमाने का लोग, 100 साल का उम्र का व्यक्ति मिला, उससे बुलाया, पूछा कि तुम बताओ तुमने हमारी कितनी पीढ़ियों का राज देखा है। बोले महाराज 3 पीढ़ियां तो मैंने देखी है। बोले जो हमारे पिता के पिताजी जो राज करते थे तब में और हम में क्या अंतर है। तो उसने कहा उस जमाने में मैं छोटा सा बच्चा था 8-10 साल का, अपने पिता के साथ नाव में जाता था, तो कोई व्यक्ति नाव क्रॉस करके गया तो कुछ सामान उसका रह गया। वो तो तीर्थ में जाते थे, प्राण हरिद्वार जाते थे 2 महीने लगते थे, फिर बैलगाड़ियों में जाते थे, पैदल जाते थे, आते थे वहाँ से तो 2-3 महीने लगते थे। 2-3 महीने के बाद वो आया नाव में और पूछा हमसे कि हम जब गए तो हमारी एक थैली रह गई थी, हमको भूल गई थी। तो उन्होंने कहा देखिए कहाँ रखी थी आपने, यहीं पड़ी होगी, हमने तो उसको हाथ नहीं लगाया। तो उसने आके देखा तो जहाँ रखी थी वहीं पड़ी थी हमारी नाव में थैली, कई यात्री चढ़े कहीं उतरे, कई मुसाफिर आए गए, लेकिन हमने उसको देखा तक नहीं, हमारा नहीं है तो हम काहे के लिए देखें। तो हमने उसको ऐसे का ऐसे दे दिया, उसमें जो भी था उसका था वो ले गया। और महाराज अब आपके समय में तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 80 साल 90 साल का हूँ, अभी मैं जाके बैठता हूँ घाट पे, ये 5-7 दिन की बात है, कोई अपना एक गमछा छोड़ के नाव के दूसरी तरफ गया, हम वापस इस तरफ आए तब तक उसको याद आया, वापस भी आया, कहा मेरा गमछा, और हमने कहा हमें मालूम नहीं। तो उस जमाने में साधारण व्यक्ति में इतनी ईमानदारी थी कि पराई चीज़ में ममता नहीं रखता था, और अब पराई चीज़ ही दिख जाए तो अपनी चीज़ को हाथ नहीं लगाता, पराई को ही अपना समझता है। ये बहुत बड़ी आज के युग में जो पराई चीज़ है वही अपनी नज़र आती है, अपनी चीज़ में किसी की आसक्ति इतनी नहीं, अपनी बाद में पड़ी रहना। तो हमने प्रायः हमने देखा है सरकार की कोई गाड़ी है तो उसको कैसे चलाओगे और अपनी गाड़ी है तो कैसे चलाओगे। सरकार तो सरकार को छोड़ो, मंदिर की गाड़ी भक्तों के हाथ में हो और अपनी गाड़ी हो, दोनों के इस्तेमाल में कितना अंतर है ये भी देखने में बड़ा अद्भुत लगता है। अपनी चीज को कितना साफ है, सरकार ये चलेगा। तो ये पराई चीज में सद्भाव नहीं होना, ये हो गई बेईमानी। ममता होना, कहीं जाते हैं पहले देखते हैं ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो हमारी, हमारे को मिलना चाहिए, ये जो भाव आ जाता है मेरा होना चाहिए, ये है बेईमानी। हमारा नहीं है, हमारा क्या मतलब, सोने की चीज पड़ी है तो सोने की पड़ी है, हमारे के इससे कोई अर्थ नहीं। तो ये बहुत बड़ा आर्जवम का अर्थ है ईमानदारी। और ए वच इस तरीके से और क्या होना चाहिए, ये तो हो गए सारी चीजें उसके स्वभाव में, ये हो गया जो देखने में आपको मिलेगा उसका व्यवहार बाहर से, जो लोग उसको देखेंगे, शांत व्यक्ति होगा, अपना मन वश में होगा, अपने इंद्रियों के ऊपर निग्रह होगा और तपस्या में रुचि रहेगी, पवित्रता बाहर की अंदर की प्रतिदिन करने का नियम बनाएगा और उसमें सहनशीलता भी होगी और ईमानदारी भी होगी। ज्ञान विज्ञान आस्त, ज्ञान और विज्ञान, अब ये हो गया उसकी उपलब्धि क्या है, उसने क्या प्राप्त किया है, तो उसने ज्ञान प्राप्त किया है और अनुभव का ज्ञान भी उसके पास है। विज्ञान का मतलब अनुभव का ज्ञान, एक ज्ञान मतलब किताब का ज्ञान, एक ज्ञान मतलब जिसको अभ्यास में लाने से जो अनुभव होता है उसको विज्ञान बोलते हैं। तो कौन सा वाला ज्ञान विज्ञान होता है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं उसको भी विज्ञान कहते हैं, लेकिन एक शब्द बोला आस्तिक्यम। कौन सा वाला ज्ञान विज्ञान, बोला आस्तिक्यम, आस्था वाला। आस्तिक्यम मतलब धर्म के ऊपर निर्धारित ज्ञान और विज्ञान, इसका अर्थ हुआ भगवान के विषय में ज्ञान और भगवान की प्राप्ति के विषय में विज्ञान की उसको जानकारी होती है अथवा उसको वो अपनाता है जो सत्वगुण का व्यक्ति है। तो आस्तिक्यम शब्द जो को है वो इन दो के साथ लगेगा कि ज्ञान तो उसको है, किसका बोला आसक्त नास्तिक और आस्तिक, तो ये नास्तिक वाला ज्ञान नहीं, नास्तिक वाला विज्ञान नहीं, आस्तिक वाला विज्ञान। आस्तिक और नास्तिक जो दो शब्द हैं, आस्तिक मतलब भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाले, नास्तिक मतलब भगवान की सत्ता को नहीं मानने वाले। तो इनको कौन सा ज्ञान होता है, इनको भगवान के ऊपर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, ऐसे ज्ञान और विज्ञान में परिपूर्ण होते हैं। तो ये ब्राह्मण के लक्षण है। तो ब्राह्मण के लक्षण, ये स्वभाव ब्राह्मण का कैसा है और ब्राह्मण के लक्षण मनुष्य स्मृति में क्या है, पठन पाठन, स्वयं विद्या का पाठ करता है, दूसरों को पढ़ाता है, यज्ञ यागन, स्वयं यज्ञ करता है, दूसरों को यज्ञ कराता है, और दान लेता है और परिग्रह लेता भी है और दान देता भी है। तो ये छठ कर्म ब्राह्मण, ब्राह्मण के ये छह काम है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना, ये छह काम ब्राह्मण के होते हैं। तो ये तो उसके कर्म है और ये इसके स्वभाव है। तो ये ब्राह्मण का स्वभाव है, ब्राह्मण सत्वगुणी व्यक्ति होता है, उसमें ये सब स्वभाव होने चाहिए। तो प्रायः इन स्वभावों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा तो वो सत्वगुण की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होने लगेगा। अब दूसरे श्लोक में क्षत्रिय का स्वभाव है, शौर्यम तेजो धृति दाक्षम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम ईश्वर भावश्च, क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। अब क्षत्रिय के कर्म क्या होते हैं, जो स्वभाव से उसके उत्पन्न होते हैं। स्वभाव से उत्पन्न होने का मतलब उनका स्वभाव जन्म से ही ऐसा होता है। प्रायः देखा जाए तो स्वभाव तो हर एक का जन्म से ऐसा बन के आता है और जिस माहौल में रहता है वैसा उसका स्वभाव बनता है। कर्म कैसे करता है उससे पहले, तो इसमें कर्म भी और स्वभाव दोनों शब्द लिखा हुआ है। स्वभाव तो जन्म से बनता है हर एक का जैसे माहौल में, तो लेकिन कर्म जिस माहौल में रहता है उस हिसाब से करता है। तो इन दो के आधार के ऊपर उसका पहचान होती है। पहला क्या है, शौर्यम, शौर्यम मतलब सूरवीरता। प्रभुपद ने अंग्रेजी में लिखा है हीरोइज्म, जो सूरवीर हैं क्या हिंदी में क्या अर्थ लिखा है हीरो जी?
वीरता,
सूरवीरता, सौरी, सौर्य मतलब सूरवीरता। सूरवीरता का अर्थ क्या होता होना चाहिए जी? ब्रेव, ब्रेव को देखो ये आतंकवादी भी ब्रेव हैं, लोगों को मार देते हैं, लेकिन सौर्य एक 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 विशेष रूप से आता है सातवें अध्याय में, वो बल जो दूसरों की रक्षा करता है, वो बल में नराणाम च नराधिपम, जो राजाओं को मैं बल देता हूँ जिस बल के द्वारा वो दूसरों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ सौरवीरता का, सूरवीरता का मतलब ये है कि जो अपनी जान की बाजी लगा के भी दूसरा जिसकी रक्षा कोई नहीं करता है उसकी रक्षा करने में अपने आप को तैयार हमेशा रखता है, उसका स्वभाव ऐसा होता है कि दूसरे की रक्षा के लिए वो बाहर निकल आएगा। अपनी रक्षा करना उसका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उसको छात्र शब्द जो छाता है ना, क्षति न किसी को छात्र, जैसे उसे छाता शब्द निकला क्षत्रि से छत्री, तो छत्री का क्या काम है कि आपके द्वारा वो दूसरों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ सौरवीरता का, सूरवीरता का मतलब ये है कि जो अपनी जान की बाजी लगा के भी दूसरा जिसकी रक्षा कोई नहीं करता है उसकी रक्षा करने में अपने आप को तैयार हमेशा रखता है, उसका स्वभाव ऐसा होता है कि दूसरे की रक्षा के लिए वो बाहर निकल आएगा। अपनी रक्षा करना उसका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उसको छात्र शब्द जो छाता है ना, क्षति न किसी को छात्र, जैसे उसे छाता शब्द निकला क्षत्री से छत्री, तो छत्री का क्या काम है कि आपको धूप से बचाए, आपको बरसात से बचाए, ये छात्री का काम है। तो ऐसे जो क्षति पहुंचती है किसी को उसको बचाए, मतलब किसी को दुख से बचाए, किसी को किसी की जान जाती है तो उसकी रक्षा करे, ये सूरवीरता है। और सूरवीरता का दूसरा भाव ये भी है कि जो शरणागत आए उसको माफ भी कर दे, ये भी शूरवीरता का एक लक्षण है। जैसे परीक्षित महाराज कलयुग को जब तलवार निकाल के मारने के लिए तैयार हुए तो कलयुग चरणों में आके गिर गया कि महाराज मेरे को जीवन दान दो, तो परीक्षित महाराज ने उसको मारा नहीं, तो ये भी वीरता है। तो वीरता का ये अर्थ है कि अपने स्वयं के लिए नहीं, लेकिन जहाँ धर्म की बात है, राष्ट्र आदि की बात है, यह सार्वजनिक बात है, उसमें अपनी जान की बाजी लगाए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन परमार्थ के लिए जो वीरता जिसमें है उसको शौर्यम कहते हैं। और शौर्यवीरता है और उसके साथ तेजो, तेज का अर्थ है एक्चुअली बल, शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली होता है का अर्थ ये है कि उसका स्वभाव ही होता है अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने का अभ्यास करता रहता है, अथवा जिसको कहा जाए कि जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है तो वो अपने उस ट्रेनिंग में भाई अपने शरीर को सबल बनाना है ताकि दूसरों की रक्षा तब कर सकेगा जब उसमें तो तेज, उसमें तेज होता है। तो तेज का मतलब उस प्रकाश ये नहीं, उसका तेज का मतलब बल होता है उसमें, वो बल भी वो अपने स्वभाव से उनकी रुचि होती है कि वो उस बल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये बल भी क्षत्रिय पुराने जमाने में शिकार करने जाते थे, शेर से जाके भरत महाराज शेर के साथ लड़ रहा है, तो ये जो उसका सौरवीरता भी है और तेज भी है। सूरवीरति का ये है कि हिंसक पशु को के साथ युद्ध करके अपने भय को खत्म करते हैं, कि मौत के सामने खेलना जिसको आता है उसको सूरवीर कहते हैं, और बल होगा तब ऐसे करेगा। तो बल भी अर्जित करते हैं, जैसे ब्राह्मण सुबह उठ के यज्ञ करेगा अथवा जप करेगा, लेकिन क्षत्रिय प्रवृत्ति या व्यक्ति सुबह उठ के व्यायाम आदि करेगा अथवा अभ्यास अपना करेगा जिससे उसकी उसके पास शारीरिक बल हो जिससे वो दूसरों की रक्षा करे, मानसिक बल के साथ उनको शारीरिक बल की, तो दोनों की प्रवृत्तियाँ उठते ही आप देखेंगे तो उसकी प्रवृत्ति अलग हो जाएगी। और तेजो के बाद है धृति, धृति का मतलब है जिसका निर्णय है, डिटर्मिनेशन, क्या कहते हैं, इरादे की पुख्तगी, और क्या शब्द है इसके लिए, हाँ संकल्प। संकल्प इसको कैसे कहते हैं कि देखो, अब कोई क्षत्रिय का मतलब राजा महाराजा जो शासन करते हैं, अब वो आप उससे पूछने जाएं कि भाई इसका क्या न्याय, इसका क्या करना चाहिए, तो उसके पास दृढ़ विश्वास करते हैं इसको ऐसे करना है, उसको कहने की हिम्मत होनी चाहिए ऐसे नहीं ऐसे नहीं, निर्णय जो नहीं ले सकता है वो शासक नहीं बन सकता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है निर्णय लेना, निर्णय लेना किसी जो चीजें वास्तविक सामने आए उसमें क्या निर्णय करना है। दृढ़ता के साथ भाई ठीक है, अब इस वक्त हमारे को हमारे देश के लिए भला क्या है, हमारे धर्म के लिए क्या आवश्यकता है, कि युद्ध करना ठीक है कि नहीं करना ठीक है, ये भी निर्णय ले सके। तो निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है। बेसिकली क्षत्रिय का क्षत्रिय शासक जो भी है वो क्षत्रिय होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्षत्रिय कहलाती है, और वॉरियर क्लास जो युद्ध में लड़ने वाले जो 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 सेना के सैनिक होते हैं अथवा सेनों के जो लीडर होते हैं, और दूसरे जो शासक होते हैं राजा आदि होते हैं, उनको निर्णय लेना चाहिए। तो ये उनके इरादा उसके जो 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 विल पावर जो है, किसी चीज़ को निर्णय लेने का जो उनमें क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा सटीक और पक्की और पुख्ती होनी चाहिए, क्योंकि सारा उनके एक शब्द के ऊपर पूरे देश का भविष्य निर्धारित रहता है। तो उनका ये उनके अंदर एक गुण धीरती का मतलब यहाँ लिखा गया कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या निर्णय होना चाहिए।
दो मीनिंग लिखे हैं, संकल्प और धैर्य, दोनों में अंतर है थोड़ा-थोड़ा।
धृती का एक यहाँ अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द ही प्रयोग करेगा, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि उसको मालूम है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो उस बात में वो विशेष रूप से स्वयं उस बात से पूरी रूप से सेटिस्फाइड है कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो धर्म के अनुकूल है, राष्ट्र के अनुकूल है, जनता के अनुकूल है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखे जो निर्णय ले सके स्वार्थ को छोड़ के, और ऐसे समय में जब बहुत मुश्किल और विषम समय है उधर जो निर्णय ले सके। बहुत ही मुश्किल समय में निर्णय लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो उस वक्त जिसको सूझबूझ रहे तो उसको धृती। दक्षम, दक्ष कहते हैं, दक्ष का मतलब एक्सपर्ट, वैसे दक्ष कहते हैं एक्सपर्ट को, हर काम में जो एक्सपर्ट होते हैं दक्ष कहते, बहुत दक्ष आदमी है। लेकिन प्रभुपाद ने यह शब्द लिखा है अंग्रेजी में, इसका अर्थ लिखा है रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मतलब कभी कोई चीज़ है कभी नहीं है, लेकिन अभाव में भी जो हिम्मत न हारे और जो व्यवस्था बन पाए उससे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हो। कभी कहते भाई हमारे पास गाड़ी नहीं थी इसलिए मैं नहीं आया। पुराने ज़माने में एक बार कहते अंग्रेज जब आए तो लखनऊ के नवाबों के लिए कहते हैं अथवा मीरों के लिए सिंध में कहते हैं कि भाई आप लोग फिर वहाँ से भागे क्यों नहीं, आपको उसने पकड़ा कैसे। बोला वो कोई आदमी नहीं था जो हमको जूती पहनाए तब हम भागे ना, तो कोई जूती पहनाने वाला ही नहीं था, हम क्या करें। तो नौकर सारे भाग गए, तो हम जब जूती पहनेंगे तब भागेंगे ना, तो अपनी जूती पहनना भी नहीं आती है तो तब तो रात चला जाएगा, जूती है कि नहीं है पाँव में तो भागना है। वो एक बार बीकानेर के किले में देखने गए थे, तो एक ऊपर छोटी सी खटिया दिखाई, पहले बच्चों की नहीं खटियाँ होती थी चौकोर इतनी छोटी खटिए। बोला ये खटिया, बोला राजा महाराजा पहले इस खटिया के ऊपर इस होते थे, नीचे पाँव होते थे, छोटी खटिया इसलिए बांध, भाई कहीं आदमी कभी आके सोए को बांध भी दे तो कम से कम टांगे तो उसकी फ्री है, उठ तो सकता है, और ये खटिया जो है उसको पीछे से बचा लेगी, पूरी की पूरी खटिया के ऊपर बांध देगा तो ऐसी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे कि कैसी अवस्था कभी हो जाए तो उस अवस्था में भी अपने कर्तव्य कर्म में कोई बाधा नहीं पड़े। तो दक्ष का मतलब दक्षता के साथ काम करते थे, हर हाल में अपने काम को संभाल लेने में उनमें क्षमता थी कि भाई वो चीज़ नहीं है तो काम कैसे होगा, नहीं है तो भी काम होना चाहिए, वो नहीं होती थी तब भी तो काम होता था ना, जब वो चीज़ें नहीं थी कैसे। भाई अभी हम प्रचार करने में जाने की बहुत इच्छा है लेकिन गाड़ी नहीं थी, जब गाड़ियां नहीं थी तब भी तो प्रचार हुआ था। देखा जाए कि यहाँ जब भी कोई मंदिर नहीं था तभी तो प्रचार बहुत से लोगों ने किया था बड़े, तो कोई चीज़ के ऊपर कि ये होगी तब होगा, ये क्षत्रिय के नहीं, जैसी भी व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उसी के साथ काम चला लेंगे। तो बहुत से लोग हैं कि जब तक व्यवस्था ठीक नहीं तब तक काम करने को तैयार नहीं, तो काम करने के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए। व्यवस्था जैसी बन पाए उससे आप काम करना शुरू करो, व्यवस्था कहीं ना कहीं से जुट जाएगी, व्यवस्था के लिए इंतजार कब तक करोगे। एक आदमी नहाने के लिए समुद्र के किनारे जा रहा था, दूसरा आदमी वहाँ से किसी गांव शहर जा रहा था, वो शहर से वापस लौट के आए तो उधर ही बैठा, बोला आपने स्नान नहीं किया। पर स्नान करने तो आया हूँ सुबह से लेकिन ये छोलियाँ आ रही हैं, बंद हो जाएं तो फिर स्नान करूँगा। तो बोला ये छोलियां थोड़ी समुद्र में बंद होती हैं, तुम्हें कूदना है तो जाके कूदो, ना के बाहर आना है तो आ जाओ, तो छोलियां रुकेंगी तब स्नान करोगे तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। तो छोलियां रुकेंगी नहीं संसार के अंदर, ऐसे नहीं है कि हर चीज हर समय आपको तैयार मिलेगी जैसे आप चाहोगे, ऐसे ऐसा नहीं संसार में होगा। जैसी व्यवस्था है, जैसी अवस्था में हो, उसमें अपने लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे हो वैसे जूझ पड़ोगे तो कोई ना कोई सहायता जरूर हो जाएगी। तो ऐसे क्षत्रिय भाव में कैसी भी अवस्था है, कभी कभी क्षत्रिय के पास हथियार होता था, तलवार गिर जाती थी तो चलो चाकू से काम लेते, चाकू नहीं तो हाथ से लड़ लेते थे, ऐसे नहीं मेरी तलवार गिर गई अब तो भाई मैं क्या करूँ, लड़ूंगा कैसे, खड़ा हो जाऊँगा, नहीं। कैसी भी अवस्था हो तो उनको ये सब शिक्षा दी जाती थी कि कभी ये भी नहीं होगा, कभी ये भी नहीं होगा, तो इसके बाद ये नहीं हो तो फिर क्या करना चाहिए, ये नहीं हो तो फिर क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ों में दक्ष रहते थे। नहीं किसी वस्तु के ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए असल में। और उसके बाद है दक्षिण के बाद युद्धे चाप्य अपलायनम, ये तो एक ही शब्द है, युद्ध का मतलब युद्ध और अपलायनम मतलब उससे कभी भागता नहीं है, पलायन नहीं करता है युद्ध से, युद्ध से पलायन नहीं करता है, ये क्षत्रिय का भाव है। जैसे कहीं धर्म युद्ध का डंका बज गया तो क्षत्रिय होगा तो अपने आप वहां खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए, भागेगा नहीं पीछे। तो भागना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी गाली होती थी पुराने जमाने में। ये आपको पुराना, अभी तो इतिहास खत्म हो गया, लड़ी लड़ाई और क्षत्रिय पने की तो अभी पहचान भी नहीं रह गई। अभी कभी देखेंगे कभी कोई ऐसे सीन में अचानक दिखेगा तो स्त्री अपने पति को आरती करके और तिलक लगा के तलवार हाथ में देती थी, और माता जो जो नौजवान होता था, विवाहित नहीं होता, नवयुवक लड़ने के लिए जाता था तो माता उसको तिलक लगा के और हाथ में तलवार दे के रवाना करती थी और कहती थी कि अगर पीठ में कभी जख्म खा के आओ तो मेरे घर मत आना, छाती पे जख्म खा के आओ तो कोई बात नहीं। और माता कहा करती थी हमारा दूध की तुम लाज रखना बेटा, जाके क्षत्रियानी जिस दिन के लिए जन्म देती है वो दिन आ गया है। ये कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के साथ संदेश भेजा था अर्जुन और भीम को, जब भगवान श्री कृष्ण गए थे हस्तिनापुर में युद्ध की संधि कराने के लिए, तो संधि तो हुई नहीं, तब वो विदुर के घर गए और फिर कुंती महारानी से मिले, तब कुंती महारानी ने यह संदेश भेजा था कि माँ बुआ बोलो क्या बोलूँ आपके बेटों को, बोलो बेटों को बुलाना कि क्षत्रियानी जिस दिन के लिए बच्चों को जन्म देती है वो दिन आ गया है, तो युद्ध से वापस नहीं हटना है। ऐसी अवस्था आती थी तो ये परंपराएं बहुत बड़ी, कितना कठोर संकल्प हुआ करता था कि माँ बेटे को युद्ध में भेज रही है, जहाँ से वापस आएगा नहीं आएगा इसको कोई निश्चित नहीं होता है, अथवा तो स्त्री अपने पुरुष को भेज रही है, तो ये बहुत बड़ी जो है क्षत्रिय धर्म बहुत भीषण धर्म है। क्षत्रिय धर्म का पालन करना बहुत भीषण धर्म है, इतना भीषण धर्म है कि अर्जुन को उस धर्म के पालन करते हुए अपने सारे संबंधियों को मारना पड़ रहा है। ये क्षत्रिय धर्म की भीषणता है, बहुत कठोर धर्म है अपने आप में पालन करना है। तो अगर न्याय करने के लिए राजा बैठा है, वो हम कभी इंदौर जाते हैं तो कहते हैं अहल्या इंदौर की महारानी हुई है, अपने उसके बेटे ने कोई अपराध किया तो उस बेटे को पहले सजा दे दी, तो अभी कहते हैं अहल्या की नगरी इंदौर कहते हैं, तो नाम हो उसका ये होगा कि अपने बेटे ने अपराध किया है तो बेटे को भी वही निर्णय की सजा मिलेगी जो दूसरे किसी ने किया होता तो उसको देती। तो क्षत्रिय धर्म अपने आप में बहुत एक भीषण और विकट धर्म है, जिसके अंदर युद्ध में दया नहीं आएगी। अर्जुन थोड़ी देर के लिए कहता है कि भीषम है, द्रोण है, लेकिन उन सबसे लड़ना है तो लड़ना, क्योंकि ये वहां से भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना। तो इसलिए बार बार भगवान श्री कृष्ण ये धर्म उचार की बात करने के बाद भगवान फिर कहेंगे स्वधर्म का पालन करो, ये दूसरे अध्याय में भी कहा है भगवान, स्वधर्म की बात दूसरे अध्याय में हुई है, फिर 18वें अध्याय में हो रही है कि अपने धर्म जिसमें हो उसी धर्म में रहकर तो भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म को हाथ लगाना चाहे तुम अच्छा भी कर सकते हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तो ये क्षत्रियों का धर्म बहुत जो है बहुत मुश्किल धर्म है, इतना आसान धर्म नहीं है। फिर दानम जी, हाँ हाँ, अपने जीवन में हाँ, वैसे क्षत्रिय व्यक्ति जो होता है उसके लिए तो कैसी भी अवस्था है उस युद्ध के स्तर पे ही अपने काम को, अब हमारा अब हर वर्ण के हिसाब से उसका कर्म अलग है। विशेष रूप से अभिवेश का कर्म आएगा, हम देखेंगे उसमें हमको क्या करना है। क्षत्रिय कर्म तो युद्ध से वापस नहीं हटता, इसके बाद दूसरा शब्द है दानम। क्षत्रिय बहुत उधार होता है। जितने बड़े पुराने मंदिर आप वृंदावन जाते हैं ना, जितने मंदिर बने हुए सब राजा महाराजों ने बनाए हैं, सब राजाओं के बने हुए मंदिर हैं। और जो घाट बने हैं राजाओं ने बनाए हुए हैं। तो धर्म के प्रति राजा सुबह उठ के बैठते थे कि कौन मांगने आया है उसको दे दो। तो दान देना भी क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है, दानम, बड़ा उधारता के साथ। यज्ञ कौन कराते थे पुराने जमाने में? क्षत्रिय राजा महाराजा कराते थे। और यज्ञ के अंदर सबको दान देते थे, कौन करते थे? हर एक व्यक्ति तो यज्ञ नहीं करा सकता। तो क्षत्रिय दान देना में उधार रहता है। तो यहां तक कि किसी को जीवन दान दे सकता है, तो बाकी संसार की कोई चीज दान देने में कौन सी बड़ी बात है। और ब्राह्मणों को बलि महाराज भगवान वामन देव को तो जब सब कुछ दान में ही दे दिया, तो ये क्षत्रिय कर्ण कितना बड़ा दानी था। तो क्षत्रिय दान देने में पीछे नहीं हटता है। एक बार आपने ये महाभारत में कथा सुनी है कि पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण बैठे होते थे, कोई ब्राह्मण दान लेने के लिए आया। उसने बोला मैं सूखी लकड़ी होगी अपनी खुद पका के खाऊंगा। तो बरसात इतनी पड़ी रही थी कि सूखी लकड़ी कहीं से मिल नहीं रही थी। तो भीम इधर उधर सब जगह देखा, लकड़ी मिली नहीं तो ब्राह्मण भूखा रह गए। फिर लकड़ी कहीं हो तब पकाए, पर लकड़ी कहीं मिल नहीं रही है, गीली है। वो कर्ण के घर पे गया। कर्ण के घर पे गया, उसने बोला मैं तो सूखी लकड़ी से ही भोजन पकाऊंगा और लकड़ी चंदन की होनी चाहिए इस तरीके से। तो कर्ण इधर उधर नहीं देखा, घर के अंदर बहुत अच्छा फर्नीचर तो बना हुआ ही था, दरवाजे कीवाड़ सब तो बने हुए थे, सूखे ही थे घर में। अपने काट के उसको दे दिया, भगवान श्री कृष्ण ले गया, पांडवों को दिखाया कि तुम्हारे घर में भी ये सामान पड़ा था, तुम्हारी सब दृष्टि क्यों गई, क्यों नहीं। तो कर्ण कितना दानी था, भगवान ने ये उनको दिखाना था। तो ऐसी अवस्था में क्षत्रिय कुछ भी दान करने में, जैसे दिखाते हैं इंद्र मांगने आता है कवच, तो क्षत्रिय है तो अर्जुन से मांग लिया, तो अपने कर्ण से मांग लिया तो उसने दे दिया। दुर्योधन कितना भाई दुर्बुद्धि हुआ था, लेकिन फिर भी मांगने के लिए अर्जुन गया कि वो पांच बाण दे दो जो तुमने कल तुम्हारे पास रखे हैं, तो ले जा। तो ये दान देने की प्रवृत्ति क्षत्रिय में बहुत बड़ी प्रबल होती है। और दानम के बाद है शब्द ईश्वर भावस। ईश्वर भावस मतलब शासन करना, ईश्वर मतलब शासक, तो उसके अंदर शासन का भाव होता है। ठीक हर एक चीज को संचालित चलाने में वो दक्ष होता है, होशियार होता है। ईश्वर भावस का अर्थ होता है संचालन करने वाला, अथवा जो जो शासन कर सके, शासक, जो सबको, उनकी भाषा ऐसी होती है, काम किसी से कैसे लेना है आपको बोलने से पता लग जाएगा कि ये क्षत्रिय बोल रहा है कि ब्राह्मण बोल रहा है। पुराने जमाने में किसी से वर्ण पूछा नहीं जाता था, उसके बोलने से पता लगता था कि ये ब्राह्मण कहीं से आएगा। तो पहले आते कहेगा भगवान विष्णु की दया जय हो, भगवान की कृपा हो आपके ऊपर, ऐसे आशीर्वाद हो आपके ऊपर। तो यजमान तो वहाँ सामने वाला क्षत्रिय भी नीचे उतर के प्रणाम करता था। तो वो कहता ही ऐसे, जो भी उसका इष्ट का भाव होगा तो आते ही कहेगा इस तरीके से। और दूसरा राजपूत जो कोई क्षत्रिय होगा तो उसके बोलने की भाषा ऐसे होगी, और जो नीचे के होते थे उसके बोलने की भाषा ऐसे, पता लग जाता कि कौन से वर्ण का व्यक्ति, उसका स्वभाव उसकी भाषा से भासता था। तो आदमी जो बोलता है उससे उसकी पहचान होती। पुराने जमाने में एक राजा अपने मंत्री और सेवकों के साथ गया हुआ था जंगल में मिर्गियाँ करने के लिए, शिकार करके। तो एक दूसरे सब भटक गए तो किसी एक रास्ता से सब गुजर रहे थे, वहाँ एक बिल्कुल सूरदास बैठा था, उसकी आँखें नहीं थी। तो राजा जब वहाँ से गुजरा तो राजा ने पूछा अंधा शाह, सूरदास शाह उर्दू भाषा का शब्द है, अंधा शाह आपने यहाँ से किसी को जाते देखा? तो सूरदास ने कहा जिए बादशाह, बादशाह तुम्हारी जय हो। बादशाह राजा को कहते हैं, हमने किसी को देखा नहीं। राजा चला गया, पीछे से मंत्री आया तो उसने कहा अंधा फकीर, ये फकीर कहते हैं भाई बुजुर्ग कोई है, साधु है तो उसको कहते हैं दरवेश। तो उसने कहा जिए बादशाह का वजीर, वजीर कहते हैं मंत्री को उस भाषा में। तो बोला वजीर साहब मैंने किसी को देखा नहीं यहाँ से। पीछे तो सेवक आया, उसने बोला अंधट मतलब अंधा। तो उसने कहा गोलट, गोलट कहते नौकर को। तो सब जनों तीनों आपस में जब जाके मिले तो उन्होंने कहा ये तो देखता तो नहीं आंखों से। राजा ने कहा मुझे तो कह दिया राजा बादशाह, मंत्री ने कहा मुझे तो कह दिया मंत्री वजीर हो। उसने कहा मैंने को तो बोला था गोलट तो नौकर। तीनों वापस लौट के आए, पूछा कि आप देखते हो? क्या बोला नहीं देखता हूँ। बोला आपको कैसे पता लगा कि कौन कौन है? बोला आपकी भाषा से जो आपने बोला मुझे पता लगा, जो मुझे बगैर आँखों वाले को जो कह सकता है कि भाई प्रज्ञ चक्षु वाला, अथवा कहे कि भाई तुम्हारी तो बड़े तुम शाह हो, तो मुझे लगा तो ये तो राजा महाराजा होना चाहिए, इतना बड़ा छोटे आदमी को आदर से बोल रहा है, तो उसकी भाषा से पता लगता है कौन व्यक्ति का स्तर क्या है। तो उठना बैठने में भाषा से पहचान होता है। तो ये विशेष रूप से ईश्वर भावस का मतलब, ये काम कर गया उठो, ये करना है वो करना है, इधर गया कि उधर गया। तो एक आदमी जो शासक होता है उसका बोलने का तरीका हम देखते हैं, तो वो ऐसा होता है कि हर चीज़ अपनी उसकी उसका जो जिस जो उसके नीचे काम करते हैं वो सब ठीक ठाक अपने टाइम से निर्णय से नेम से काम करने में बंधे होते हैं। तो ब्राह्मण ब्राह्मण शासक नहीं है, इसलिए ब्राह्मण का बहुत बोलने का भाषा दूसरी होगी। तो ये उसका ईश्वर भावस्य। तो ये क्षत्रिय के कितने 7 गुण मेरे ख्याल में ब्राह्मण के बताए, सम दम तप आर्जवम क्षांतिर शौचम 7, ज्ञान विज्ञान 8-9 गुण ब्राह्मण के बताए, और क्षत्रिय के हो गए शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम 4, युद्धे च अपलायनम इच्छे दानम ईश्वर भावस्य। ये भी 7-8 गुण है। तो ये क्षत्रिय के गुण है, और क्षत्रिय में कि युद्ध करना है और शासन करना है तो कौन सा गुण प्रबल होगा इसमें? बोला रजोगुण में क्षत्रिय विशेष रूप से रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण का मतलब है शासन करना, आगे बढ़ना दूसरे से, तो ये रजोगुण प्रधान होता है क्षत्रिय। अब वैश्य और शूद्र ये दोनों का एक ही श्लोक में वर्णन है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म सोदरस्यापि स्वभावजम। कृषि, कृषि का मतलब खेती, जमींदारी, जमीन को रखना, गाय पशु की, पशु को पालना, गौरक्षा है, गौरक्षा मतलब गाय की रक्षा करना, पशु पालना, पशु को संभालना, और चौथा है वाणिज्यम व्यापार करना। ये 3 कर्म वैश्य के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, तो जमींदारी, पशु पालना और व्यापार करना। ये 3 कर्म भगवत गीता की दृष्टि से वैश्य वृत्ति के लोगों के होते हैं, और एक ही कर्म शूद्रों के लिए लिखा है, और वो है परिचर्यात्मकम। परिचर्या का मतलब सेवा, परिचर सेवा करना, जो सेवा में ही लगन रहे। किसकी सेवा? सबकी सेवा। बाकी जो सेवक धर्म है वो विशेष रूप से शूद्रस्यापि स्वभावजम, शूद्र के स्वभाव से उत्पन्न होता है। सेवक का मतलब ये जिसको कहा जाए वही करे, अपनी उसमें इनिशिएटिव नहीं है कि मैं मुझे कुछ करना है मैं खुद कर लूँ, नहीं, कहा जाएगा वही करेगा, जितना कहोगे उतना करेगा, जैसे चाहोगे वैसे करेगा। ये क्षत्रिय, क्यों? कृषि गोरक्षा वाणिज्य में अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है, लेकिन इन 3 कामों के लिए आपको रक्षा के लिए चौथा कोई दूसरा आदमी चाहिए। व्यापार करोगे तो कोई दूसरा रक्षक चाहिए, आपका सामान आता है जाता है कोई लूटेगा नहीं, आपका माल है तो उसको भी कोई चुरा के नहीं जाए। पुराने ज़माने में भाई गैया चुराने चले गए, भाई पांडवों ने भेज दिया विराट की गाय चुरा के आओ, तो गाय चुराने गए तो उनकी रक्षा के लिए युद्ध हुआ करता था, तो माल की रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय को करनी है। तो ये 3 काम है, इसके अंदर उनको किसी और की सहायता की जरूरत पड़ती है रक्षा के लिए, तो ये वैश्य के कर्म तीन है विशेष रूप से, और ये वैश्य सत्तो रजोगुण और तमोगुण दोनों का प्रभाव उसके ऊपर रहता है, रजो और तमोगुणों का मिक्स असर रहता है। और शूद्र जो होता है, शूद्र का मतलब है क्षुद्र, क्षुद्र मतलब कुछ भी नहीं, अथवा तुच्छ, तुच्छ का मतलब ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं होती है, जैसे उसको कहोगे वैसे कर लेगा। तो जो सेवा के लिए निर्धारित होते हैं उनको सेवा का धर्म कहते हैं। इन चीज़ों का भागवत में वर्णन ऐसे है कि ये जो चार वर्ण है, ये चार वर्ण की व्यवस्था समाज को चलाने के लिए है। जैसे ये शरीर है, शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर के अंदर सर है, सर के अंदर दिमाग है, और दिमाग पूरे शरीर को ठीक तरह से चलाता है। हाथ है शरीर में, हाथ का काम है सारे शरीर में, कहीं भी तकलीफ होती है तो हाथ से उसको सहलाया जाएगा, खारिश भी हो गई, कोई डंडा मारता है तो हाथ से रोकना है, सर के ऊपर मारेगा तो भी हाथ से रोकना है। तो हाथ क्षत्रिय है, माथा ब्राह्मण है, पेट जो है, उदर जो है, ये वैश्य है। वैश्य उदर है कि सारे वैश्य खाना भोजन जाएगा पेट में, तब सर को भी शक्ति मिलेगी, हाथ को भी मिलेगी, पाँव को भी मिलेगी। ऐसे वैश्य ही विशेष रूप से वाणिज्य के द्वारा, कृषि के द्वारा और गौरक्षा के द्वारा आपके लिए खाने की सामग्री जो भी है, भोजन आदि है, वो वैश्य से मिलेगा। वाणिज्य करेगा अन्न वहाँ से मिलेगा, कृषि करेगा वहाँ से अन्न पैदा होगा, और गौरक्षा आदि करेगा तो आपको दूध आदि सब चीज़ें मिलेंगी। तो वो सब सारे समाज के आवश्यकताओं को पूरा करता है। और पाँव, ये सारे तीनों चीज़ों को लेके चलते हैं, उठा के चलने का भार पाँव के ऊपर है सबसे। तो ये सेवा का भाव है ये, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने पाँव को अपने हाथ से लगा लेते हैं, कि अथवा सबसे ज़्यादा कहते हैं भाई चरण दबाओ, तो शूद्र को ही देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि काम वो ज़्यादा करता है, थकता वो है। तो तीनों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई समाज में मानो कि 100 आदमी है एक, तो 100 में से मुश्किल से 5-7 ब्राह्मण वृत्ति के लोग होंगे, और क्षत्रिय वृत्ति के उससे डबल होंगे 15-20 लोग, और उससे डबल वैश्य वृत्ति के 30 लोग होंगे। 30, 15 और 7 कितने हो गए, 30, 40, 45। तो 50% से ऊपर 60% जो लोग हैं वो काम करने वाले लोग, किसी समाज के अंदर आप देख लीजिए। तो आपके असेंबली में कितने लोग हैं पूरे, जो 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 अपना एमएलए कितने हैं, 540 समझो, और आर्मी में कितने होंगे, 1,00,000 होंगे। तो और व्यवसाय में कितने, और सर्विस में कितने, उनसे 50 गुना ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से बहुत कम ब्राह्मण, बहुत ब्राह्मण वृत्ति के लोग बहुत कम होते हैं। जैसे असेंबली को प्रभुपाद एक बार मिलना था, इंदिरा गांधी से मिलने गए थे, तो बोला ये जो असेंबली में बैठते हैं ये ब्राह्मण होते हैं, इनको संविधान बनाना होता है, पूरे देश का मार्ग करना दर्शन इनको करना होता है, कम से कम इसका फॉर्म भरने से पहले उनको बोलो कि 4 नियम का पालन किया करें, तभी जाके असेंबली में बैठने के अधिकारी हैं। कि ब्राह्मण का उसमें गुण नहीं होगा तो कैसे पूरे देश का मार्गदर्शन करेंगे। तो वहाँ पर लिखा था एक चार्टर पूरा मिलने के लिए जाएंगे तो ये उनसे बात करनी है, नहीं तो ऐसे लोगों को वहाँ बिठाने की जरूरत क्या है जो जो स्वयं ही सम दम तप, न उनका मन शांत है, न उनकी इंद्रियां वश में है, न पवित्रता उनके जो है वो लक्षण में है। तो वो लोग क्या दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, दूसरों को कैसे कहाँ से रास्ता बता सकते हैं। तो ये समस्या है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने कहा मैं असल में यहाँ ब्राह्मण बनाने के लिए आया, आइए ब्राह्मण का स्वभाव अपनाइए और पवित्रता को अपनाइए, थोड़ी तपस्या को अपनाइए और ज्ञान विज्ञान में आपको सिखाता हूँ। क्योंकि संसार के अंदर ब्राह्मण वर्ण लुप्त होता जा रहा है, दिखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं। तो ब्राह्मण वर्ण की अति आवश्यकता है समाज के अंदर। क्षत्रिय भी बहुत नहीं के बराबर रह गया है, दो वर्ण इस धरती के ऊपर से लुप्त होते जा रहे हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण नाम के रह गए हैं। क्योंकि क्षत्रिय कोई भी ब्राह्मण को और क्षत्रिय को दोनों को मतलब पैसा लेना नहीं है काम करने का, ब्राह्मण दान से जीता है, क्षत्रिय टैक्स से जीता है, तनख्वाह नहीं लेते हैं दोनों। अब यहाँ तो ब्राह्मण को भी तनख्वाह मिलती है और क्षत्रिय को भी तनख्वाह मिलती है, तो वो दोनों नहीं रह गए वो। तो इस वक्त दुनिया के अंदर दो ही वर्ण प्रायः हैं, एक तो बिजनेसमैन हैं जैसे यूरोप और अमेरिका, ये बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट है, और रशिया चाइना ये कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं, काम करेंगे, काम करने वाले। तो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दो ही वर्ण हैं। एक शूद्र प्रायः शूद्र वृत्ति के लोग हैं, काम करते हैं और मालिक बनने का प्रयास करते हैं, और दूसरे वैश्य वृत्ति के लोग हैं जो सामान बेचकर दुनिया को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए संसार के अंदर शांति है नहीं, क्योंकि शांत लोग तो हैं नहीं जो शासन करते हों, न शांति है न चरित्र है। ईमानदारी नाम की एक जो जो आर्जवम शब्द था ब्राह्मण का, वो ईमानदारी किसी में है नहीं। ईमानदारी तो उड़ती जा रही है समाज से अंदर तक, क्योंकि ऊपर तक ईमानदारी है नहीं। तो ये वर्ण आश्रम व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, तो इसलिए जहाँ वर्ण आश्रम व्यवस्था ठीक नहीं, एक शरीर जिस आदमी का है उसका दिमाग तो खराब है और हाथ लूले लंगड़े है, लूला है बिल्कुल, खा तो ठीक रहा है, पेट उसका ठीक ठाक है, पाँव ठीक है, चल सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन दिमाग ठीक नहीं है, हाथ लूले लंगड़े, तो किसी काम का है क्या समाज के अंदर? ऐसे व्यक्ति को क्या करोगे? उसको कभी रोटी तो चार रोटी खा ही लेता है, आठ रोटी खा लेगा और उठ के चल सकता है, जा सकता है, आ सकता है, लेकिन हाथ से कुछ कर नहीं सकता है, हाथ बिल्कुल वैसे हैं, और सर दिमाग में कुछ बुद्धि है नहीं, अकुल है नहीं, तो वो किस काम का है? वो तो बेकार ही व्यक्ति हो गया ना, तो रोटी रोटी ही है वो खा रहा है, और क्या कर रहा है? तो चल रहा ऐसा समाज है कि इस वक्त न कोई मार्गदर्शन करने वाला समाज में है, कि लोग शिक्षा देने वाला भी नहीं है। यही बात कोई कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इतने सारे विश्वविद्यालय रोज बनते जा रहे हैं, कोई एक भी विश्वविद्यालय के अंदर एक विभाग नहीं है जहाँ आत्मा का ज्ञान दिया जाए। कहीं विश्वविद्यालय कोई है क्या? एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आत्मा का ज्ञान दिया जाए? इस शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या सबके लिए? अरे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा जिंदा रहना है, हम जीवित रहेंगे तभी तो हम किसी काम आएंगे। तो हमारे को जीवित रहने के लिए क्या चीज़ है जो हमको जीवित रखती है? आत्मा जो है तब तो हम जीवित हैं, आत्मा नहीं है तो जीवन समाप्त हो गया। तो आत्मा जिसके आधार पर हम जीवित रहते हैं, उसकी शिक्षा के लिए तो कोई विश्व विभाग नहीं है, किसी विश्वविद्यालय के अंदर कोई एक विभाग नहीं है जहाँ ये शिक्षा दी जाए, जिसके अंदर जिसके द्वारा आदमी शांति कहाँ से मिलती है? शांति तो आत्मा के स्तर की चीज़ है, शांति शरीर से नहीं प्राप्त होती है। तो ऐसा एक भी शिक्षा का कहीं भी दुनिया के अंदर विभाग नहीं है जहाँ आत्मा की शिक्षा दी जाए। तो शारीरिक स्तर के ऊपर दूसरी तो आवश्यकता आपको अपने शरीर को ठीक रखने की, शरीर ठीक होगा तभी तो आपका काम चलेगा। शरीर ठीक नहीं है, रोगी शरीर किसी काम का नहीं है, तो किसी काम को आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। तो शरीर को भी ठीक रखने का कोई विज्ञान नहीं है कि शरीर बीमार न होने से बच जाए, रुष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए भी शिक्षा कहीं मिले। ऐसे भी किसी विश्वविद्यालय में कोई ऐसी शिक्षा का स्थान नहीं है, बाहर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन ऑफिशियली बहुत ऐसी शिक्षा कहीं मिलती हो या उसमें लोग जाते हो ऐसा बहुत कम मिलता है। दो ही चीज़ों की शिक्षा मिलती है जितने विश्वविद्यालय हैं, शरीर को चलाने के लिए पैसा कमाने का माध्यम, पैसा कैसे कमाना, एक यही शिक्षा मिलती है कि पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ बस, अथवा व्यवसाय करो, सीख के यही। और अनपढ़ लोग इससे बड़ा जो सबसे बड़े लोग इस वक्त देश के अंदर कारोबार कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं, उनके पास पढ़े लिखे नौकर रखे हुए, वो नहीं पढ़े लिखे हैं। बहुत से लोग जिन सबसे बड़े कारोबार चल रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो आपका पढ़ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है आपके तो पढ़ने लिखे ने एक ही काम सीखते, नौकरी करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जो विश्व के अंदर जितने ही पढ़ाई के विभाग बने हुए हैं वो सिर्फ आपको शूद्र की शिक्षा दे रहे हैं कि शरीर को कैसे चलाना है, उसके लिए काम कैसे करना है। चाहे पैसे 1,00,000 रुपया महीने के कमाओ, लेकिन काम तो वही सेवा ही कर रहे हो ना। तो एक भी ऐसा शिक्षा का केंद्र नहीं है जहां आत्मा की शिक्षा दी जाती। तो ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था का उद्देश्य है कि आत्मा की शिक्षा सब जगह सुलभ और निःशुल्क पहुंचाई जाए, जिसके द्वारा लोग शांति को प्राप्त कर सकें। तो आत्मा की शिक्षा भगवद गीता आत्मज्ञान है, और आत्मा की शिक्षा के बाद आगे बढ़ा के उसको भगवत शिक्षा दी जाती है। वो पोस्ट ग्रेजुएशन आगे बढ़ेगा तो भगवान की शिक्षा दी जाती है कि आत्मा भगवान का है, आत्मा भगवान की सेवा में रहेगा तभी सुखी हो सकता है। भगवान के सेवा के बगैर, भगवान के साथ संबंध स्थापित किए बगैर कोई भी संसार में सुखी नहीं रह सकता है, ये शिक्षा और कहीं नहीं मिलती है। इस शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। और दूसरी चरित्र की आवश्यकता है। ये देखो, इसमें सबके चरित्र पहले बताए गए हैं। हर एक वर्ण का अपना अपना चरित्र होता है। तो चरित्र इस वक्त संसार के अंदर से चरित्र कपूर की तरह उड़ रहा है, पेट्रोल की तरह उड़ता जा रहा है, ईथर की तरह उड़ रहा है। चरित्र बहुत दिखने को नहीं मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा चरित्रवान हो, मेरा बेटी चरित्रवान हो, मेरी पत्नी चरित्रवान हो। लेकिन चरित्र होता किस में, चरित्र किस पात्र के अंदर होता है, वो पात्र का किसी को पता नहीं। पानी पीने के लिए आपको कहेंगे पानी तो गिलास लाओगे, लोटा ले आओगे, कोई पात्र होगा तो पानी पियेंगे ना, अथवा हाथ से पियेंगे। लेकिन पानी तब पियेंगे जब कोई पात्र होगा तब ना। तो ऐसे चरित्र के लिए भी कोई पात्र होना चाहिए। आध्यात्मिकता वो पात्र है जिसमें चरित्र टिकता है। जब आध्यात्मिकता नहीं है तो चरित्र आएगा नहीं, क्यों, पात्र नहीं है तो चरित्र कहाँ बैठेगा चरित्र। आध्यात्मिक वृत्ति के लोग हैं उनमें चरित्र हमेशा रहता है। देख लीजिए पुराने राजा महाराजों का चरित्र, कितना चरित्र था, नियमित रूप से अपने नियमों को कितना ठीक तरह से पालन करने के उनका बड़ा आश्चर्य लगता है कि उनका चरित्र इतना बड़ा। ऊंच चरित्र के लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं जो कितना चरित्रवान हुआ करते थे। तो आध्यात्मिकता ऐसा पात्र है जिसके अंदर चरित्र टिक सकता है। तो ये सब प्रभुपाद का उद्देश्य था, दैवी वर्ण आश्रम कॉलेज खोला जाए। दैवी वर्ण आश्रम कॉलेज का मतलब है, दैवी का मतलब भगवान से संबंधित, क्योंकि सारे भागवत कहती है वर्ण आश्रम का सब काम करते हुए अगर भगवान नारायण की, कृष्ण विष्णु की अगर संतुष्टि नहीं होती है तो सारी मेहनत बेकार की है। तो दैवी का मतलब भगवान से संबंधित, कृष्ण भावना भावित वर्ण आश्रम कॉलेज खोलना चाहिए। उनका ये भाव था, अभी तक कहीं हो नहीं पाया है, लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ जो लोग ब्राह्मण वृत्ति के हैं उनको शास्त्र का ज्ञान ठीक तरह दिया जाए, जाके लोगों को आत्मा का साक्षात कराने में सहयोग करें, भगवान की भक्ति कराने में सहयोग करें। और जो लोग क्षत्रिय भाव के हैं उनको शासन की आवश्यकता है, तो वो किस तरीके से ठीक शासन करें वो उनको शिक्षा दी जाए। पुराने ज़माने में तो गुरुकुल के अंदर सब शिक्षाएं मिलती थी, ब्राह्मण को ब्राह्मण की शिक्षा मिलती थी, सबको पहले सामान्य शिक्षा मिलती थी। भाषा आनी चाहिए, गणित आनी चाहिए, भूगोल आना चाहिए, इतिहास आना चाहिए, ये सब पहले 3-4 साल सबको सामान्य पढ़ाया जाता था। उसके बाद जिस वर्ण का व्यक्ति होता था उस वर्ण की शिक्षा उसको विशेष रूप से दी जाती थी। तो ऐसी शिक्षा अगर दी जाए, ऐसा कॉलेज खुले, तो 20 साल से की उम्र तक सब लोगों को अपने काम में लग जाना चाहिए। 35-40-30 साल तक पढ़ के रहने और उसके बाद क्या संसार को दोगे, जब खुद ही आधी उम्र खा गए तो फिर तुम कहाँ दुनिया की सेवा कर सकोगे। तो पहले ज़माने में ब्रह्मचार्य तो 20 साल की शिक्षा करके 25-25 साल मैक्सिमम वो भी अभ्यास में चला जाता था, शिक्षा तो खत्म हो जाती। तो ऐसी व्यवस्था बनाने का विचार था, बनी नहीं है, जब बनेगी आगे चल के बनानी पड़ेगी, इसके बगैर समाज तो बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। बहुत रेयर ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। वैसे जन्म से तो नहीं मानते हैं, सिद्धांत तो यह है कि जन्म से कोई वर्ण आश्रम नहीं होता है, कर्म और स्वभाव से होता है। तो कोई व्यक्ति अपना स्वभाव बदल के सतोगुण का बना सकता है तो ब्राह्मण की वृत्ति का बन जाए तो ब्राह्मण की सेवा कर सकता है। लेकिन जो अपना स्वभाव रजोगुण की व्यक्ति का स्वभाव है और उससे आगे नहीं बढ़ सकता है तो वो अपना उसी कर्म में लगता है। कर्म तो उसको वही करना चाहिए जो उसका स्वभाव है। ये भगवद गीता का शिक्षा है कि अपने स्वभाव के अनुकूल काम करना चाहिए, स्वभाव के विपरीत नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षा हमारे पास तो हमारा देवी वर्ण आश्रम है। ब्राह्मण दीक्षा देने का उद्देश्य हमारा सिर्फ होता है कि ठाकुर जी की पूजा घर में है तो ठीक तरह से कर ले। ब्राह्मण दीक्षा के ब्राह्मण के उसमें लक्षण तो होने चाहिए, लेकिन उद्देश्य हमारा होता है कि पूजा में आवश्यकता पड़ती है, जिसको ब्राह्मण दीक्षा होती है वो ठाकुर जी की पूजा कर सकता है, भगवान के लिए भोग बनाना है तो उसकी ये सेवा हो जाती है, तो सेवा की दृष्टि से उसको ये दीक्षा दी जाती है। बाकी पढ़ने के लिए जो है, पढ़ने पढ़ाने के लिए तो जो उसकी योग्यता बनेगी तो जाके ब्राह्मण का कार्य करें। अब जैसे हमारे ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं ली हुई है, ये कोई विशेष रूप से जाके ब्राह्मण का कार्य तो नहीं करते हैं। ब्राह्मण के कार्य का मतलब विशेष रूप से कोई सत्संग करने गए के अथवा लोगों को शिक्षा देने का ये कार्य तो नहीं करते हैं, शिक्षा देने आदि का कार्य उसका ये है कि वो अपने जीवन में प्रयास करते हैं कि समदम आदि गुणों को ईमानदारी है कि इस तरीके से अपना जप तप ये सब ठीक करें, इतना ही उसमें उद्देश्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका क्या प्रश्न था? अपनी आत्मा का हनन, अपनी आत्मा का हनन करने का होता आत्महत्या करने के जैसा है कि वो जो आदमी अपनी आत्मा का भला नहीं सोचता है, आत्मा का भला जो नहीं सोचता है, आत्मा का भला सोचने का मतलब है कि आत्मा के उद्धार के लिए सोचे कि भाई आत्मा इस शरीर से अलग है तो ये शरीर समाप्त होगा, आत्मा समाप्त नहीं होगी, तो आत्मा किसकी है, उसको कहाँ पहुँचना चाहिए, जो ये जिज्ञासा नहीं करता है वो आत्महनन करता है। ये तो शब्द है पशु घन है उसको, या आत्महनन ऐसे शास्त्र में विशेष रूप से ये शब्द आया है उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिकता के लिए सावधान नहीं है, जो आध्यात्मिक जीवन को बिल्कुल महत्व नहीं देता है, केवल भौतिक ही संसार में फंसा होता है, वो आत्महा है अथवा आत्मघाती है अथवा अपने आत्मा को संसार में भटकने के लिए छोड़ देता है। इसका अर्थ ये कि जो आध्यात्मिक रूप से जो जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो। आपका क्या प्रश्न है? कौन, हर एक व्यक्ति को नहीं, ये स्वभाव तो हर एक के अंदर। अपने घर में पूजा आप लोग करते हैं तो ब्राह्मण का कार्य हो गया। अब नहीं, ये तो देवी वर्ण आश्रम प्रभुपाद बहुत बड़ा लेक्चर दिया एक बार कि भाई मैं उठ के थोड़ी देर में यहाँ सफाई करूँगा, काम तो शूद्र का है लेकिन भगवान के मंदिर में कर रहा हूँ तो ये दैवी है। दैवी कहने का मतलब, देवी शब्द जोड़ने का मतलब भगवान से संबंधित सारे कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर आपको वही कार्य करना है जो आपका स्वभाव और आपके नेचर से, जिसकी आपने शिक्षा ग्रहण की है, जो आपके पास स्पेशलिटी है, वही काम आपको समाज में सुख देगा। व्यक्तिगत रूप के बच्चे को साफ करती है माता जी तो ये शूद्र का काम हो गया, लेकिन वो शूद्र नहीं हो गई उससे। तो ये वो दैवी वर्ण आश्रम की परिभाषा है। अब घर में पूजा करनी है, अपनी रक्षा करने के लिए कोई आ जाता है तो रक्षा करने का प्रयास करता है, घर में शासन करना है अपने बच्चों के ऊपर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा गिन के लेना है, गिन के देना है, ये तो कोई भी वर्ण वाला होगा उसको करना पड़ेगा, लेकिन विशेष रूप से समाज की व्यवस्था की बात है। वर्ण आश्रम समाज की व्यवस्था है, समाज के अंदर कौन सा व्यक्ति कौन से गुण वाला क्या काम करे, ये जब तक समझ में नहीं आता, ये सारा इस वक्त सारा जो राष्ट्र का अहित हो रहा है उसका कारण ये है। अयोग्य व्यक्ति जो जिस वर्ण का नहीं है उसको उस स्थान के ऊपर बिठाया हुआ है, जो जिस वर्ण का है नहीं, उसका वो स्वभाव ही नहीं है, तो उसको उस स्थान के ऊपर बिठाया है। इसलिए एक बहुत ही इतनी गुथी हुई है कि पता नहीं कहाँ जाएंगी, तो निश्चित रूप से जिस तरफ हम जा रहे हैं ये पतन का तरफ है, ये कभी भी ऊपर उठने का तरफ नहीं जा रहे। अभी हाँ नहीं नहीं तो बहुत इस कलयुग में 10,000 साल तक तो बहुत अच्छा समय आने वाला है, ऐसा कहा गया है कि कलयुग में 10,000 साल तक सत्ययुग जैसा अच्छा समय आएगा, और वो समय निकट में रहेगा, उसके बाद तो इससे ज़्यादा और बहुत कठिन समय आने वाला है। अपना समय बहुत थोड़ा है यहाँ, तो इसलिए अच्छे से अच्छा काम करके और अपना समय बिताया जाए। आपका क्या प्रश्न?
ब्राह्मण का स्वभाव सत्व होता है।
हाँ जी,
और वो हमेशा प्रयास करता है आत्मा को समझने के लिए, अपन साक्षात्कार
बराबर।
जो शूदर है
हाँ जी,
उसको ये राइट नहीं है कि वो आत्म साक्षात्कार के बारे में सोच सके।
सबको आत्म साक्षात्कार, ये देखो जैसे कथा सुनना, कीर्तन करना, जप करना, ये तो सबका करना है, ये तो सबको करना है, लेकिन समाज की सेवा की बात है, समाज की व्यवस्था है वर्ण आश्रम। शूद्र को, सेवक को भी आके भगवत गीता सुननी, जप करना, ये उसको अधिकार है, भगवान का दर्शन करना, प्रसाद खाना, ये अधिकार है, लेकिन समाज के अंदर समाज के अंदर उसको कहें कि आप जो है जाके युद्ध करो सेना की बॉर्डर के ऊपर, तो वो उससे नहीं होगा। वो उसको भेजोगे तो आपकी विजय नहीं होगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है, उसमें वो वीरता नहीं है जन्म से, और न उसकी उसकी शिक्षा ही उसको नहीं मिली है, उसके खून में वो चीज है ही नहीं।
हाँ
अगर भाग्यशाली है, ऐसा किसी का चेंज हो जाए, कोई अच्छी शिक्षा लेगा तब चेंज होगा। क्या उसने कहीं शिक्षा ली है? क्या कहीं शिक्षा पद्धति से गुजरा है? क्या अपने आप तो कुछ लोग ऐसे मेरे जन्म से शूद्र वैश्य नहीं मानते हम, लेकिन स्वभाव से पता लगता है कि कौन से स्वभाव का व्यक्ति है। तो आपको भी पता लगता है, अपने बच्चों में भी स्वभाव का पता लगता है। प्रारब्ध किसे? कर्म है, कर्म प्रारब्ध। प्रारब्ध से कर्म के अनुसार ऐसे है ना कि ब्राह्मण के घर में जन्म मिल सकता है, तो आपको मौका मिला है कि ब्राह्मण के स्वभाव को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नहीं करोगे तो ब्राह्मण कया नहीं जाएगा। उसको कहते द्विज जाति कहा करते थे कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है लेकिन ब्राह्मण जैसा स्वभाव नहीं है, क्षत्रिय के घर में जन्म हुआ है लेकिन क्षत्रिय जैसा स्वभाव नहीं है। वैसे स्वभाव हो जाना उसके लिए ज्यादा चांसेस है, लेकिन किसी शिक्षा से गुजरा है कि नहीं गुजरा है? शिक्षा के गुजरा है तो ठीक है। जैसे डॉक्टर, कोई भी डॉक्टरी पढ़ के आएगा, चाहे शूद्र है वैसे ब्राह्मण है, किसी के घर में जन्म लिया, हमें कोई लेना देना नहीं, डॉक्टरी पास करके आ गया है तो डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी एक डॉक्टर होगा जो ब्राह्मण वृत्ति का होता है, वो दयालु होगा, कुछ लेगा नहीं, दुखी सुखी का दुख सुख में जाकर सेवा करेगा। लेकिन एक व्यक्ति होगा ही बहुत क्रूर व्यक्ति है, लेकिन पढ़ के तो आगे माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा था, तो वो तो आधा पेट काटने के बाद बोलेगा कि भाई देखो 5,000 रुपया रखना है तो रखो, नहीं तो मैं बंद नहीं करूंगा, ऐसे बहुत से। तो ये तो उसका ये स्वभाव नहीं है उसका। तो ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे हर प्रोफेशन के अंदर जो उसके स्वभाव के विपरीत नहीं काम विपरीत काम कर रहे हैं, उनका स्वभाव ये नहीं है। अब जितना सारा प्रोफेशनों का सत्यानाश हुआ है, इसका कारण ये है कि उसमें सही आदमी नहीं है। अरे नहीं, उनका काम ब्राह्मण का काम है आत्म शिक्षा देना, क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलनी है। नहीं, जो आध्यात्मिक शिक्षा देती है तो ये ब्राह्मण का कार्य है, लेकिन वो शिक्षा तनख्वाह से नहीं है कि मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये ब्राह्मण का बिना वो ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। तनख्वाह लिया तो ब्राह्मण खत्म हो गया। भगवान की इच्छा से जो आता है भगवान के तो ठीक है, ब्राह्मण का दान लेना अधिकार है लेकिन तनख्वाह लेना अधिकार नहीं। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा जो दे रहे हैं वो ब्राह्मण तो का काम है, निश्चित रूप से ब्राह्मण तो का काम है, जिनको शिक्षा दे के उस काम के लिए तैयार किया है। हाँ तो ये मेरे जीवन से ये समाज की व्यवस्था है। धर्म सबके लिए, चारों वर्णों को धर्म के ऊपर चल के भगवान को प्राप्त करने का अधिकार है, किसी को उससे वांछित नहीं। इसके बाद यही आएगा, इसके बाद श्लोक यही आएंगे, हमने यहाँ छोड़ दिया, इसके बाद श्लोक 4-5 ऐसे ही है कि अपने वर्ण के अंदर रहते ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो उसमें किसी को रुकावट नहीं है। लेकिन समाज में, व्यवस्थित समाज तब होगा जब सही आदमी सही जगह पे होगा। जो शासक है उसको शासन पे बिठाओ, शासक को दुकानदारी में बिठाओगे तो दुकानदारी नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। दुकानदारी में तो सबको बोलना पड़ता है, भैया ठीक है बहुत अच्छा, उसे नहीं बोला जाएगा, बोला चलो जाओ, आपने ऐसे दुकानदार कहीं देखे दो बार कुछ ये चीज देखा, भाई नहीं चलो जाओ, लेकिन वो दुकानदार के लायक नहीं। जिसके दुकान से एक बार ग्राहक उतर गया उसने 10 ग्राहक और खराब कर दिए, ऐसे बहुत से लोग हैं। चलो जाओ, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, तो ये अव्यवस्थित वर्ण आश्रम व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, वो है नहीं। ये समाज की जो है वो कहा जाए है ग्लानी हो रही है इसके ऊपर, पूरे विश्व के अंदर ऐसी स्थिति है, लेकिन भारत में ये पहले होता था, यहाँ भी खराब हो गया, अब क्या करें?
ऐसा सुनने में आया कि गोवर्धन में जो संस्कृत का स्कीम है वो बड़े स्कीम पे आ रहा है, एफिलिएशन हो रही है इसकी यूनिवर्सिटी से, तो दैट इज द फर्स्ट आई थिंक जो धर्म के ऊपर एक डिस्कशन बन रहा है।
अच्छी अच्छी बात है, ये बंद नहीं हो रहा, नाराज हो गया।